पिछले अंक में बात की थी कि बालक हरबंस राय यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनका पहले नाम हरबंस राय था, उनके बचपन में उनके परिवार के गुरुजी ने क्या भविष्यवाणी की थी और भाग्य एवं नियति के खेल पर नज़ीर अकबराबादी की एक बड़ी अच्छी नज़्म भी सुनाई थी, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आज के अंक में भाग्य पर ही कुछ और बात करते हैं और बताते हैं बालक हरबंस राय के जीवन के सबसे पहले महत्वपूर्ण और स्वतंत्र निर्णय के बारे में। उसी संदर्भ में मधुशाला की ये चतुष्पदी। मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूं कोई, किंतु उलट देता प्याला। कवि कहते हैं कि मैं तो कब से प्रतीक्षा में बैठा हूं कि कुछ अच्छा हो, किंतु कुछ अच्छा होता ही नहीं। अभी तक पीने को हाला ही नहीं मिल पाई। बड़ी मेहनत से मैं किस्मत के प्याले को भरता हूं और कोई आके उसे उलट जाता है। अब ये बात प्रतीक है जीवन की अनिश्चितताओं की। मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूं कोई, किंतु उलट देता प्याला। अब यहां बात है जीवन की अनिश्चितताओं की। आप कितनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर लें, कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है जो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दे। जैसे आजकल की दुनिया को कहते हैं इट्स ए वूका वर्ल्ड। वूका यानी VUCA, वी फॉर वॉलेटिलिटी, यू फॉर अनसर्टेनिटी, सी कॉम्प्लेक्सिटी, ए एम्बिग्युइटी। तो अब ये जो वूका वर्ल्ड होता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, ढेरों अनिश्चितताएं भरी होती हैं। कुछ ऐसी ही बात इन पंक्तियों में है। मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। अब देखिए इन पंक्तियों में विरोधाभास है कि विद्यालय में तो पढ़ा था कि जो मानव का बल होता है उसके आगे भाग्य निर्बल हो जाता है, किंतु ये जो जीवन की मधुशाला है, जब हम वास्तविकता के धरातल पर आते हैं तो जीवन की मधुशाला उल्टा ही पाठ पढ़ाती है कि भाग्य प्रबल है और मानव निर्बल। बताइए, जब भाग्य बल के बारे में बात आई है तो एक किस्सा है बच्चन जी के बचपन के दिनों में, जब उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था तो यूपी ही, वहां केवल उर्दू का ही बोलबाला था। बच्चन साहब के पिताजी स्वयं भी उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे, तो हुआ ये कि बच्चन बाबू ने भी अपनी पढ़ाई उर्दू से ही शुरू की और शुरुआती कई सालों तक हिंदी के नाम पर बस कुछ पत्रिकाएं ही पढ़ी थी। उन्हीं दिनों एक बार एक गुरु स्वामी सत्यव्रत वहां उपदेश दे रहे थे। बच्चन बाबू उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें हिंदी से ही प्रेम हो गया और वहीं से निर्णय ले लिया कि आगे की पढ़ाई हिंदी में ही करेंगे। अब उस समय पढ़ाई का माध्यम अचानक बदल लेना कोई आसान बात तो थी नहीं। सेशन के बीच में भाषा बदल लेने से परीक्षा में नुकसान का खतरा अलग, और पिताजी भी इसके पक्ष में नहीं थे। तो सबसे पहले तो जैसे तैसे पिताजी को मनाया गया और उसके बाद सरकारी व्यवस्था से लड़ाई। उस समय का नियम ऐसा था कि पहले डेप्यूटी इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी होगी, एक पत्र लिखवाना होगा, उसके बाद ही कहीं जाकर भाषा माध्यम का परिवर्तन होता था, यानी आप अपनी पढ़ाई की भाषा बदल सकते थे। तो बाबूगिरी या ब्यूरोक्रेसी वो उस समय भी कोई कम नहीं थी। खैर, बच्चन बाबू इसे अपने जीवन का सबसे पहला स्वतंत्र और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कहते हैं, अपनी पढ़ाई का माध्यम उर्दू से हिंदी में बदल लेना। अब रोचक बात यह है कि वो जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने ये अनुमति दी थी, वो कई साल बाद बच्चन साहब के कवि सम्मेलन में उनसे मिले और बड़े ही प्रसन्न हुए अपने उस समय के निर्णय पर। सोचिए, उस समय यदि बच्चन बाबू अपने भाषा माध्यम को नहीं बदल पाते तो हमें हिंदी की इतनी सुंदर कविताएं कहां से मिलती। तो सारांश ये है कि भाग्य तो प्रबल है ही, किंतु इच्छा बल, विल पावर, इच्छा शक्ति, अगर वो आपके पास है तो आप दरवाजे को धक्का देकर खोल सकते हैं। किंतु कई बार भाग्य इतना प्रबल होता है कि सामने ठोस दीवार आ जाती है और उसके बाद भी आप उसमें से होकर जाना चाहें तो सर फूटने का खतरा तो है ही। देखिए बच्चन जी अपनी एक कविता में क्या कहते हैं। आ रही प्राची छित से खींचने वाली सदाएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों दो दुआएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों दो दुआएं, नाव नाविक फेर ले जा है नहीं कुछ काम इसका, आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं भुजाएं, आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं भुजाएं, प्राप्त हो उस पार भी इस पार सा चाहे अंधेरा। यानी पूर्व दिशा से आवाजें आ रही हैं और कवि सितारों को कहते हैं कि दुआएं दो। अब ये भी कहते हैं कि नाव में नहीं जाना, आज नाव का कोई काम नहीं है, आज तो मुझे भुजाओं से ही तैरना है। आ रही प्राची छित से खींचने वाली सदाएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों दो दुआएं। अब चाहे उस पार भी इस पार जैसा अंधेरा हो, किंतु जाना है तो जाना है, तैरना है तो तैरना है। प्राप्त हो उस पार भी इस पार सा चाहे अंधेरा, प्राप्त हो युग की उषा चाहे लुटाती नव किरण धन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, प्राप्त हो युग की उषा चाहे लुटाती नव किरण धन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, आज लहरों में निमंत्रण। यानी मैं अब किनारे पर कैसे रुक जाऊं, लहरें मुझे निमंत्रण दे रही हैं, इनवाइट कर रही हैं, अब तो मुझे समुद्र में जाना ही होगा, तैरना ही होगा। तो यहां देखिए कि नाविक एक ओर तो सितारों से दुआ मांगता है, किंतु लहरों से उलझने के लिए स्वयं तैयार भी है। यह मानव दुर्बल नहीं है, ये किनारे पर रुककर भाग्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ये तो बस चल पड़ता है अग्निपथ के मानव की तरह। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ। ये मानव बस चलता जाता है, चाहे राह कितनी भी कठिन हो, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अब भाग्य और किस्मत पर बहादुर शाह जफर का एक शेर है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुएयार में। कुएयार होता है प्रेमिका की गली। शायर कहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूं, मुझे दफनाने के लिए भी मेरी जो प्रेमिका है उसकी गली में वहां भी जगह नहीं मिली। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुएयार में। यहां शायर ने दो गज जमीन की बात की थी और मधुशाला में कवि दो बूंद हाला की बात करते हैं। साकी मर खप कर यदि कोई आगे कर पाया प्याला, पी पाया केवल दो बूंदों से न अधिक तेरी हाला। साकी मर खप कर यदि कोई आगे कर पाया प्याला, पी पाया केवल दो बूंदों से न अधिक तेरी हाला। यानी जैसे तैसे प्याला सामने आता है, तब भी मैं केवल दो बूंदे ही पी पाता हूं, उससे अधिक नहीं पी पाता। साकी मर खप कर यदि कोई आगे कर पाया प्याला, पी पाया केवल दो बूंदों से न अधिक तेरी हाला। जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बूंदों ने। यानी जीवन भर का जो परिश्रम था वो केवल दो बूंदों में ही लुट गया। जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बूंदों ने, भोले मानव को ठगने के हेतु बनी है मधुशाला, भोले मानव को ठगने के हेतु बनी है मधुशाला। यानी ऐसी है नियति, ऐसा है भाग्य, ऐसे खेल खेलते हैं कि जीवन भर का परिश्रम केवल दो बूंदों में लुट गया। जीवन की मधुशाला ने, नियति ने एक भोले मानव को इस तरह से ठग लिया। एक तरह भागम भाग और आपाधापी की भी बात है यहाँ, कि जैसे स्टैम्पीड होता है या भगदड़ होती है कुछ पाने के लिए, उस भगदड़ में कई बार कितने ही लोग मारे भी जाते हैं और कितने ही घायल भी हो जाते हैं, और इतना करके भी वो बस दो ही बूंद ले पाए तो क्या हासिल हुआ। किंतु मधुशाला का महत्व इतना है कि केवल दो बूंदों के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते, जीवन भर का परिश्रम लगा देते हैं कि बस दो बूंदें मिल जाएं इस जादुई मायावी दिव्य मधुशाला की। ऐसा खेल खेलती है ये जीवन की नियति की मधुशाला। कबीरदास जी शायद इस बात को पहचान गए थे, इसीलिए कह गए माया महा ठगनी हम जानी, कि ये जो माया है, नियति है, बहुत बड़ी ठगनी है और मुझे पता लग गया है। यहां अगर थोड़ी दार्शनिक बात करें तो जो जीवन को स्वीकार करता है उसे जीवन के पूर्व अज्ञात अनजाने अकस्मात जो हस्तक्षेप होते हैं, जो इंटरवेंशंस होते हैं, उनको भी समझना होगा, उन्हें भी स्वीकार करना होगा। जिसे हमारे पूर्वज देव कहते थे उसे हम भाग्य, नियति, घटना, मौका या चांस कुछ भी कहें, किंतु उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो समझी तो जा सकती हैं, सिद्ध नहीं की जा सकती, उन्हें प्रूव नहीं कर सकते। तो नियति का ये जो हस्तक्षेप होता है कई बार इतना अतार्किक, इलॉजिकल, अनियमित, इरेगुलर या स्वेच्छा प्रेरित उतना नहीं जितना हम अपनी मंदबुद्धि से या इग्नोरेंस में या अल्पज्ञता में समझते हैं। नियति इस तरह से हस्तक्षेप क्यों करती है कि किसी के सामान्य चलते जीवन में कुछ नया कर देना, मानो नियति एक दीवार के पीछे छिपी हो और अपने दोस्तों से कहती हो आज कुछ तूफानी करते हैं, और बस कर डाला कुछ तूफानी अपने ही मनोरंजन के लिए। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि नियति ऐसे ऐसे खेल खेलती है? एक संभावित सिद्धांत या प्रोबेबल थ्योरी हो सकती है कि हम जो बात करते हैं द्वंद्वात्मक जीवन की, डायलेक्टिक लाइफ या सरल शब्दों में काउंटर बैलेंस, कि एक बात का संतुलन जो है, यानी कहीं आपने कुछ संतुलन गड़बड़ किया तो संतुलन मेंटेन करने के लिए उसके विपरीत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी यूनिवर्स में हो रहा होगा, या शायद इसी धरती पर होगा। अब जैसे धूप आती है उसके बाद छाया आती है, आग के बाद पानी, गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, इसी तरह से दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो ये जो बैलेंस है और काउंटर बैलेंस है ये हमेशा चलता रहता है। तो हो सकता है यही प्रकृति का या ब्रह्मांड का तरीका है इस तरह का संतुलन बनाए रखने का, जिसे हम नियति का नाम दे देते हैं। पुराने जमाने की एक गजल है, पहले कभी बड़ी लोकप्रिय थी, उसकी दो पंक्तियां इस तरह से हैं, दो फूल साथ फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक शाह नामवर है एक राह का गदा है। गदा फारसी में फकीर को कहते हैं, कि दो फूल साथ साथ खिले थे, किस्मत देखिए कि एक तो रास्ते का फकीर हो गया और एक बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। दो फूल साथ फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक शाह नामवर है एक राह का गदा है। मानव के भाग्य से संघर्ष की बात करें तो कुछ लोग स्वयं को पूरी तरह भाग्य के हाल पर छोड़ देते हैं, और शायद इसीलिए वो अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सके, बस भाग्य की ओर देखते ही रहे कि वह उनका निर्माण कर दे। और भाग्य ऐसे में क्या करता है, यदि हम भाग्य की प्रतीक्षा करते बैठे रह जाएं, भाग्य उस मानव को ही विध्वस्त करके एक खंडहर सा बनाकर छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं भाग्य अपना काम करता रहेगा किंतु उसके भरोसे मत बैठो। यहाँ मैथिली शरण गुप्त की एक बड़ी सुंदर कविता याद करते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम की विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम की विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। बचपन में माँ और पिताजी बहुत ये कहा करते थे कि आलस से छोड़ो और उठकर कुछ काम करो, किंतु वहाँ पर भाग्य का खेल नहीं होता था, वहाँ डंडे का खेल होता था कि ये जो नर है ये अगर बैठा रहा आलस्य में तो डंडों की जब मार पड़ेगी मधुशाला आड़ नहीं करेगी। अब भाग्य बल और उसके सामने सामर्थ्य और पौरुष की बात हो रही है तो महाकवि दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी उसका उल्लेख कैसे ना हो। ये पंक्तियां देखिए जो पांडवों के संघर्षों और उन पर विजय पाने की कहानी कहती हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यानी मानवों के भीतर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं, बस निकालने की बात है। हरे पत्तों वाली मेहंदी में कितनी लाली छिपी होती है, और जब तक हम स्वयं उठकर काम नहीं करेंगे काम कैसे होगा। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। यानी मेहंदी जब पिसती है तभी तो उसमें लाली आती है, तभी तो वो ललनाओं का श्रृंगार बनती है। फूलों को जब भेदा जाता है, उनको पिरोया जाता है धागे में, तभी तो हम उन्हें गले लगाते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यानी मानव जब कुछ सोच ले, निश्चित कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो क्या टिक सकता है उसके सामने। जब मानव जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बचपन में जब एनसीसी के कैंप लगते थे और उनके लिए किसी जंगल में पहाड़ों पर एक पथरीली जमीन को समतल करना होता था, बड़ा मुश्किल काम बच्चों के लिए, तब वहां सीओ साहब दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति सुनाते थे। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो वीर रस के इन्हीं भावों के साथ आज विराम लेते हैं। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके भावार्थों की, कुछ जीवन अनुभवों की, और सुनाते हैं कुछ छोटे छोटे किस्से कहानियाँ। अगले अंक में बताएंगे कि पायोनियर प्रेस में काम करते हुए बच्चन बाबू का कई बार किस तरह अपमान होता था और वो उसे किस तरह लेते थे। बच्चन जी ने अपने जवानी के दिनों में पायोनियर प्रेस में गश्ती एजेंट का काम किया है, उस समय को थोड़ा सा याद करेंगे। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं iTunes या Spotify पर। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जब चाय का दिल हो उठकर बना लीजिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए।